कैसे परिवर्तनकारी एआई ने राजनीति को बदल दिया, सेबेस्टियन कुर्ज और ऑस्ट्रिया के शांत प्रयोग पर एक सट्टा की स्टडी। दिसंबर 2017 में केवल 31 वर्ष की आयु में सेबेस्टियन कुर्ज ने ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में शपथ ली, उस समय दुनिया में सरकार का सबसे युवा प्रमुख। उन्होंने कभी कोई बड़ा सरकारी मंत्रालय नहीं चलाया था। उच्च स्तरीय राजनीति में उनका अनुभव विदेश मंत्री के रूप में अपेक्षाकृत छोटे कार्यकाल और रूढ़िवादी ऑस्ट्रियाई पीपल्स पार्टी OV.P के युवा विंग के माध्यम से बढ़ते हुए बिताए वर्षों तक सीमित था। राजनीतिक तैयारी के हर पारंपरिक मानक, मंत्रिस्तरीय पोर्टफोलियो के दशक, पेट्रोनेज नेटवर्क का जाल, संस्थागत गरिमा का धीमा संचय जो आमतौर पर एक यूरोपीय नेता को परिभाषित करता है, के अनुसार उनका उदय एक परिपक्व यूरोपीय लोकतंत्र में असंभव नहीं तो अप्रत्याशित होना चाहिए था। फिर भी कुर्ज ने सिर्फ चुनाव नहीं जीता, उन्होंने अपनी पार्टी को भीतर से नया आकार दिया। मीडिया चक्र पर सर्जिकल सटीकता के साथ हावी रही, पारंपरिक आउटलेट्स और नवजात सोशल प्लेटफॉर्म्स पर उल्लेखनीय संदेश अनुशासन बनाए रखा और रणनीतिक प्रवाह और आत्मविश्वास का एक स्तर प्रदर्शित किया जिसे पर्यवेक्षकों ने इतने युवा और अपेक्षाकृत अनुभवहीन व्यक्ति के लिए बार बार आश्चर्यजनक बताया। लगभग एक दशक बाद 2026 में एआई क्रांति के पूर्ण छाप के साथ 2017 के ट्रांसफॉर्मर ब्रेकथ्रू से लेकर आज राष्ट्रीय सुरक्षा को नया आकार देने वाले संप्रभु स्तरीय एआई सिस्टम तक कुर्ज की कहानी एक सहज राजनीतिक चमत्कार से कम और एक शुरुआती प्रलेखित केस स्टडी में से एक की तरह पढ़ी जाती है कि कैसे परिवर्तनकारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने चुपचाप लोकतांत्रिक राजनीति को नया रूप देना शुरू किया। आम जनता को बड़े भाषा मॉडल या जनरेटिव टूल्स के बारे में पता चलने से वर्षों पहले संवर्धन की एक अदृश्य परत पहले से ही काम कर रही होगी। डेटा संचालित अंतर्दृष्टि तथा अनुकूलन और भविष्य कहने वाला मॉडलिंग की एक ओरेकल परत जो बैक चैनल्स के माध्यम से संचालित हो रही थी, जिसे कुलीन खुफिया तकनीकी हलकों के बाहर कुछ ही लोग देख सकते थे। यह निश्चित रूप से सट्टा है। हमारे पास स्मोकिंग गन दस्तावेज या मुखबिर गवाही का अभाव है जो अनिवार्य रूप से कुर्ज के 2017 अभियान को आधुनिक एआई संवर्धित राज्य कला के शुरुआती परिनियोजनों से जोड़ सके। लेकिन टाइमलाइन, व्यक्तिगत गठबंधनों, तकनीकी विभक्ति बिंदुओं और कुर्ज के बाद के करियर मोड का अभिसरण इतना हड़ताली है कि यह गहन विचार का पात्र है। क्या होगा यदि ऑस्ट्रिया, छोटा और वैश्विक मंच पर अक्सर अनदेखा किया जाने वाला, शक्ति के अगले युग के लिए एक अनजान बीटा प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता था? क्या होगा यदि एक युवा महत्वाकांक्षी नेता ने केवल करिश्मे के माध्यम से नहीं बल्कि मानव राजनीतिक प्रवृत्ति के मशीन बुद्धिमत्ता के साथ पहले अस्थायी संलयन के माध्यम से एक असममित बढ़त हासिल की? प्रारंभिक नींव, कूटनीति, डेटा और महत्वाकांक्षा 2013-2016। सेबेस्टियन कुर्ज का उदय 2017 में रातोंरात नहीं हुआ। इसकी जड़ें 2013 में 27 वर्ष की आयु में विदेश मंत्री के रूप में उनकी असंभावित नियुक्ति तक फैली हुई हैं, एक कदम जो पहले से ही उनकी असाधारण महत्वाकांक्षा और युवाओं पर दांव लगाने के लिए पार्टी के बुजुर्गों की इच्छा को संकेत करता था। उस पद से कुर्ज ने व्यवस्थित रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित किए जो बाद में उनके ब्रांड को परिभाषित करेंगे, सुरक्षा केंद्रित, इसराइल समर्थक और आप्रवासन और एकीकरण पर बिना पछतावे वाला कठोर। उनमें से कोई भी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उनके गहरे होते बंधन से अधिक परिणामकारी साबित नहीं हुआ। 2014 की शुरुआत में शुरू होकर मई 2016 में एक उच्च प्रोफाइल आधिकारिक यात्रा के साथ तीव्र होते हुए कुर्ज ने नेतन्याहू के साथ असामान्य रूप से गर्म व्यक्तिगत और वैचारिक गठबंधन विकसित किया। उन्होंने इसराइल की कई बार यात्रा की, सार्वजनिक रूप से मजबूत समर्थक इसराइल रुख अपनाया जो एक यूरोपीय संदर्भ में अलग खड़ा था जो अक्सर यहूदी राज्य के प्रति अधिक आलोचनात्मक होता है, और नेतन्याहू को एक संरक्षित व्यक्ति के रूप में खुलकर बात की। निजी बातचीत और सार्वजनिक बयानों दोनों में दोनों नेता दोनों सुरक्षा, सीमा नियंत्रण, प्रतिकूल सूचना वातावरण में कथा प्रबंधन और बाहरी दबावों के बीच घरेलू एकजुटता बनाए रखने की चुनौतियों के प्रति गहरे संवेदनशील ने उपजाऊ साझा आधार पाया होगा। नेतन्याहू ने अपनी ओर से बार बार कुर्ज को इसराइल और यहूदी लोगों का सच्चा मित्र बताते हुए द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए ऑस्ट्रियाई के प्रयासों की प्रशंसा की। उसी समय कुर्ज का आंतरिक घेरा पारंपरिक राजनीतिक प्रवृत्तियों पर आराम नहीं कर रहा था। उनके भरोसेमंद रणनीतिकार फिलिप माडरथानर, जो अभियान वास्तुकार बाद में ओवुक की 2017 की जीत की रूपरेखा तैयार करेंगे, के राष्ट्रीय चुनाव से पहले कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ प्रलेखित संपर्क में थे। फरवरी 2017 में माडरथानर ने एक ईमेल भेजा जिसमें फर्म के अग्रणी कार्य में गहरी रुचि व्यक्त की गई, विशाल सोशल मीडिया डेटासेट से ली गई साइकोग्राफिक प्रोफाइलिंग, मतदाताओं के व्यक्तित्व आधारित माइक्रो टारगेटिंग और हाइपर विशिष्ट दर्शकों के लिए संदेशों को अनुकूलित करने के लिए डिजाइन किए गए शुरुआती मशीन लर्निंग मॉडल। यहां तक कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की अप्रत्याशित जीत में फर्म की भूमिका की भी प्रशंसा की। जबकि मार्ड्रथानर ने बाद में ईमेल की प्रामाणिकता की पुष्टि की, लेकिन ऑस्ट्रिया में किसी भी औपचारिक अनुबंध या परिनियोजन से इनकार किया। स्वयं पहुंच पुष्टि करती है कि कुर्स की टीम उन मतदान और फोकस समूह विधियों से बहुत आगे काम कर रही थी जिन्होंने दशकों से यूरोपीय अभियानों को परिभाषित किया था। वे राजनीतिक प्रौद्योगिकी के अत्याधुनिक स्तर की जांच कर रहे थे, वही उपकरण जिन्होंने पहले ही एंग्लो अमेरिकी क्षेत्र में अपनी शक्ति प्रदर्शित कर दी थी। यह संयोजन इजरायली खुफिया तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र, सिग्नल्स इंटेलिजेंस, बहुभाषी डेटा संग्रह और प्रभाव संचालन में उनकी बेजोड़ विशेषज्ञता के साथ घनिष्ठ संबंध और कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसे पश्चिमी डेटा एनालिटिक्स अग्रदूतों के साथ समानांतर प्रयोग ने कुर्स को अगली पीढ़ी के उपकरणों का एक असामान्य रूप से प्रारंभिक और आक्रामक अपनाने वाला बना दिया। ऐसे युग में जब अधिकांश यूरोपीय राजनेता अभी भी अंतर्ज्ञान, अनुभवी सलाहकारों और पुराने मतदान फर्मों पर निर्भर थे, कुर्स की कक्षा चुपचाप कुछ और अधिक परिष्कृत निर्माण कर रही थी, एक संकर क्षमता जो मानव नेटवर्क को डेटा संचालित दूरदर्शिता के साथ जोड़ती थी। 2017 तकनीकी विभक्ति वर्ष। जिस वर्ष कुर्स ने सत्ता हथियाई वह कोई संयोग नहीं था। यह वह वर्ष भी था जब आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अंतर्निहित आर्किटेक्चर में एक भूगर्भीय बदलाव आया। जून 2017 में ऑस्ट्रिया के अक्टूबर के संसदीय चुनाव से महीनों पहले गूगल शोधकर्ताओं ने ऐतिहासिक पेपर अटेंशन इज ऑल यू नीड प्रकाशित किया जिसने ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पेश किया। यह सफलता डेटा के अनुक्रमों को क्रमिक रूप से नहीं बल्कि समानांतर में संसाधित करने के लिए अपने क्रांतिकारी तंत्र के साथ उस स्केलेबिलिटी को अनलॉक किया जो आज हर प्रमुख बड़े भाषा मॉडल को शक्ति प्रदान करती है। इसने सिस्टम को संदर्भ बारीकियों और दूरगामी निर्भरताओं को उन तरीकों से समझने में सक्षम बनाया जो संकीर्ण एआई पहले नहीं कर सकता था। उसी वर्ष की शुरुआत में अमेरिकी रक्षा विभाग ने प्रोजेक्ट मेवेन लॉन्च किया था जो सैन्य और खुफिया कार्यों में मशीन लर्निंग को एकीकृत करने का उसका पहला ठोस प्रयास था। दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों ने तुरंत निहितार्थ को समझ लिया। विशाल डेटासेट्स का सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म के साथ संलयन न केवल युद्ध को बल्कि धारणा प्रबंधन, भविष्य कहने वाला विश्लेषण और प्रभाव अभियानों को भी बदल देगा। इसराइल की यूनिट 8200 जिसे लंबे समय से ग्रह पर सबसे दुर्जी सिग्नल्स इंटेलिजेंस इकाइयों में से एक और साइबर सुरक्षा और एआई स्टार्टअप्स के एक विपुल इंक्यूबेटर के रूप में मान्यता प्राप्त है, इस क्षण को भुनाने के लिए असाधारण रूप से अच्छी स्थिति में थी। इकाई ने विशाल बहुभाषी डेटासेट्स, विशेष रूप से अरबी और मध्य पूर्वी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण संबंधित भाषाओं में एकत्र किए थे, अनिवार्य सेवा के माध्यम से कुलीन तकनीकी प्रतिभा विकसित की थी और अस्तित्वगत राष्ट्रीय खतरों के अथक दबाव में काम किया था। भावना विश्लेषण, जनमत के भविष्य कहने वाला मॉडलिंग तथा अनुकूलन और लक्षित प्रभाव संचालन के लिए पूर्व ट्रांसफॉर्मर संकीर्ण एआई उपकरण 2016-2017 तक पहले से ही परिपक्व थे। ट्रांसफॉर्मर ब्रेकथ्रू ने न केवल इन क्षमताओं को तेज किया, इसने उन्हें घातीय रूप से अधिक शक्तिशाली, अनुकूली और स्केलेबल बनाने का वादा किया। नेतन्याहू के साथ कुर्स के सुप्रलेखित व्यक्तिगत तालमेल, पारंपरिक नौकरशाही सीमाओं के साथ उनकी स्पष्ट महत्वाकांक्षा और अधीरता के लिए प्रतिष्ठा और अटूट संदेश नियंत्रण के प्रति उनके जुनून को देखते हुए यह पूरी तरह से प्रशंसनीय है कि उन्होंने इजरायली उपकरणों, पहले उन्नत संकीर्ण एआई और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म्स और संभावित रूप से प्रोटोटाइप रूप में वर्ते ट्रांसफॉर्मर प्रतिमान द्वारा संवर्धित सिस्टम तक विशेष प्रारंभिक पहुंच प्राप्त की। नेतन्याहू के लिए यह एक बहुआयामी रणनीतिक जीत का प्रतिनिधित्व करता था। मध्य यूरोप में एक भरोसेमंद युवा वैचारिक रूप से संरेखित आवाज विकसित करना, एक स्थिर कम जोखिम वाले पश्चिमी लोकतंत्र में अगली पीढ़ी की राजनीतिक प्रौद्योगिकी का चुपचाप तनाव परीक्षण करना और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना जो खुफिया साझाकरण और तकनीकी सहयोग में लाभांश का भुगतान कर सकते थे। कुर्स के लिए इसने ऐसी क्षमताएं प्रदान की जिनसे अकेले मानव सलाहकार या यहां तक कि कैम्ब्रिज एनालिटिका भी मेल नहीं खा सकता था। विखंडित मीडिया पारिस्थितिकी तंत्रों में वास्तविक समय पैटर्न पहचान, हाइपर सटीक मतदाता विभाजन और मशीन समान दूरदर्शिता के साथ तथा परिणामों का अनुकरण करने की क्षमता। ऑस्ट्रिया यूरोप की अनजान बीटा प्रयोगशाला के रूप में। ऑस्ट्रिया ऐसे प्रयोग के लिए लगभग पूरी तरह से इंजीनियर साबित हुआ। 9 मिलियन से कम की आबादी के साथ यह इतना छोटा था कि कोई भी परिचालन संबंधी कदम या अनपेक्षित रहस्य उद्घाटन राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर ही सीमित रहेगा, बल्कि बड़े भू राजनीतिक क्षेत्रों में फैलने के बजाय। इसका मीडिया पारिस्थितिकी तंत्र, परिष्कृत फिर भी प्रबंधनीय प्रभावशाली टैब्लॉयड और एक विखंडित सार्वजनिक क्षेत्र के साथ तंग संदेश अनुशासन और तीव्र अनुकूलन को पुरस्कृत करता था। बहुदलीय प्रणाली अपने आनुपातिक प्रतिनिधित्व और गठबंधन आवश्यकताओं के साथ तथा सुसंगतता और गठबंधन प्रूफ ब्रांडिंग पर एक प्रीमियम रखती थी। और कुर्स स्वयं युवा टेलीजेनिक फोटोजेनिक और आप्रवासन सुरक्षा और ताकतवर नेतृत्व पर लेजर फोकस्ड ने परीक्षण के लिए एक आदर्श लोकलुभाव आर्किटाइप पेश किया कि ये उपकरण 2015 के प्रवासी संकट के झटकों से अभी भी जूझ रहे पश्चिमी यूरोपीय संदर्भ में कैसा प्रदर्शन करेंगे। बेहतर डेटा एकीकरण और जिसे कोई प्रारंभिक एआई सहायता के रूप में अनुमान लगा सकता है के साथ कुर्स के अभियान ने ऐसे करतब हासिल किए जो लगभग अलौकिक लग रहे थे। उन्होंने ओवुप के भीतर संचार को एक डिग्री तक केंद्रीकृत किया जो यूरोपीय केंद्र दक्षिणपंथी पार्टियों में शायद ही कभी देखा गया हो। इसे एक रूस संस्थान से एक चिकनी आंदोलन शैली वाहन में बदल दिया। अभियान संदेशन ने असामान्य सुसंगतता और अनुकूलनशीलता प्रदर्शित की। पारंपरिक प्रिंट मीडिया, टैब्लॉयड हेडलाइंस और अभी भी उभरते सोशल प्लेटफॉर्म्स को निर्बाध रूप से जोड़ते हुए उन्होंने लगातार पुराने, अधिक अनुभवी प्रतिद्वंद्वियों को मात दी जिनके पास दशकों अधिक अनुभव था। वंडरकिंड कथा केवल व्यक्तिगत करिश्मे या अनुकूल समय के कारण नहीं पकड़ी गई, यह टिकी रही क्योंकि कुर्स ने जो लगभग अलौकिक रणनीतिक प्रवाह की तरह लग रहा था उसके साथ काम किया। सार्वजनिक भावना में बदलावों का पूर्वानुमान लगाना, प्रतिक्रियाएं तैयार करना जो जनसांख्यिकी में प्रतिध्वनित होती थी, और अनुशासन बनाए रखना जहां दूसरे लड़खड़ाते थे। यह कोई परिकल्पना कर सकता है ओरेकल परत थी जो क्रिस्टलाइज होने लगी थी। एक अदृश्य सर्वदर्शी रणनीतिक बुद्धिमत्ता, भाग मानव अंतर्दृष्टि, भाग मशीन संवर्धन, जो दृश्यमान राजनीतिक नेता के पीछे या बगल में चुपचाप काम कर रही थी। पूर्ण जनरेटिव एआई नहीं जैसा कि हम 2026 में जानते हैं, लेकिन कुछ संक्रमणकालीन ट्रांसफॉर्मर नीव द्वारा संवर्धित संकीर्ण सिस्टम, मतदान, सोशल डेटा और मीडिया सिग्नल की विशाल धाराओं को अवशोषित करने में सक्षम ताकि इष्टतम संदेशन वेक्टर, जोखिम आकलन और कथा प्रतिवाद सुझाए जा सके। संवर्धित शक्ति की सीमाएं और पतन। कई वर्षों तक संवर्धित प्रणाली ने प्रभावशाली परिणाम दिए। कुर्स ने ऑस्ट्रियाई राजनीति पर दबदबा बनाया, गठबंधन बनाए, दूर दक्षिणपंथी फ्रीडम पार्टी के साथ विवादास्पद एक सहित और उच्च अंतर्राष्ट्रीय दृश्यता बनाए रखी। फिर भी उन्नत उपकरण, चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, उनकी अपनी सीमाएं हैं। वे धारणा प्रबंधन, मतदाता प्रेरणा और अल्पकालिक कथा नियंत्रण में उत्कृष्ट हैं, लेकिन वे संस्थागत प्रतिरोध, स्वतंत्र पत्रकारिता जांच, गठबंधन घर्षण या मानव अतिक्रमण और त्रुटि के अपरिहार्य परिणामों को पूरी तरह से बेअसर नहीं कर सकते। घोटालों ने अंततः इस ढांचे को खत्म कर दिया। जांचों ने अनुकूल मीडिया कवरेज और हेरफेर किए गए मतदान डेटा को वित्तपोषित करने के लिए दुरुपयोग किए गए सार्वजनिक धन के आरोपों का खुलासा किया। रणनीतियां जो हालांकि कुर्स के लिए अद्वितीय नहीं है, उसी धारणा इंजीनियरिंग में अति आत्मविश्वास को प्रतिबिंबित करती प्रतीत होती थी जिसने उनके उदय को गति दी होगी। तकनीकी बढ़त जो कभी अचूक लग रही थी, अनजाने में अहंकार को बढ़ावा दे सकती थी। इंजीनियर ऑप्टिक्स पर एक अति निर्भरता जिसने ऑपरेटरों को एक लोकतंत्र में पहचान के जोखिमों के प्रति अंधा कर दिया जो अभी भी स्वतंत्र अभियोजकों, संसदीय पूछताछ और एक स्वतंत्र प्रेस से सुसज्जित था। 2021 तक भ्रष्टाचार और झूठी गवाही की बढ़ती जाँच के बीच कुर्स को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। ओरेकल परत चाहे कितनी भी परिष्कृत क्यों न हो, राजनीतिक गुरुत्वाकर्षण के नियमों को निरस्त नहीं कर सकती थी। तार्किक अगला अध्याय परीक्षण विषय से विक्रेता तक। पद छोड़ने के बाद भी कुर्स का प्रक्षेप वक्र बताने वाला और पूर्वव्यापी रूप में लगभग काव्यात्मक रूप से सुसंगत बना रहा। जनवरी 2023 में उन्होंने ड्रीम सिक्योरिटी की सह स्थापना की जो एक तेजी से बढ़ती इजरायली आई मूल साइबर सुरक्षा कंपनी है जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे के लिए संप्रभु सरकारी स्तरीय रक्षा प्रणालियों में विशेषज्ञता रखती है। उनके भागीदारों में शालिव हुलियो, विवादास्पद एनएसओ ग्रुप, पेगासस स्पाइवेयर के निर्माता के पूर्व सीईओ और साइबर विशेषज्ञ गिल्ड ओलेव शामिल थे। उद्यम का फोकस तीखा था, यह संचालित साइबर लैंग्वेज मॉडल और लचीलापन प्लेटफॉर्म बनाना जो परिष्कृत राज्य प्रायोजित साइबर हमलों का उनके साकार होने से पहले पता लगाने, कम करने और बेअसर करने में सक्षम हो। ठीक उसी प्रकार का संप्रभु स्तरीय एआई जिसे कुर्स जैसे नेता अपने चांसलर अनुभव पर चित्रण करते हुए अस्तित्वगत समझते थे। कंपनी की उन्नति उल्का पिंडीय रही है। फरवरी 2025 तक स्थापना के केवल दो साल बाद ड्रीम ने बेन कैपिटल वेंचर्स के नेतृत्व में $100 मिलियन की सीरीज बी फंडिंग की घोषणा की जिससे $1.1 बिलियन का मूल्यांकन प्राप्त हुआ और वह वर्ष का इसराइल का पहला साइबर यूनिकॉर्न बन गया। ग्रुप 11, एलिफ, ट्रू एरो और ताओ कैपिटल सहित निवेशकों ने भाग लिया। कुर्स अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए सार्वजनिक रूप से चिंतन किया है कि कैसे उनके कार्यकाल ने उन्हें राष्ट्रीय स्तरीय साइबर खतरों की अद्वितीय कमजोरियों में प्रत्यक्ष अंतर्दृष्टि दी, ऐसे खतरे जो निजी कंपनियों का सामना करने वाले खतरों से गहराई से भिन्न हैं। पूर्व चांसलर ने क्लासिक चक्र पूरा कर लिया था, उभरते उपकरणों का प्रारंभिक अपनाने वाला राजनीतिक क्षेत्र में शांत बीटा परीक्षक अगली पीढ़ी के एआई सिस्टम के उच्च प्रोफाइल विक्रेता और वास्तुकार जिन्हें अब दुनिया भर की सरकारों को विपणन किया जा रहा है। व्यापक निहितार्थ एआई संवर्धित राज्य कला का जन्म। सेबेस्टियन कुर्स का करियर आग परिवर्तनकारी एआई ने राजनीति और राज्य कला की प्रकृति को चुपचाप कैसे नया रूप देना शुरू किया है, इसके सबसे स्पष्ट प्रारंभिक खिड़कियों में से एक प्रदान करता है। यह बदलाव 2022 के अंत में चैट जीपीटी की सार्वजनिक शुरुआत के साथ उत्पन्न नहीं हुआ। यह वर्षों पहले शुरू हुआ कारकों के एक संगम के माध्यम से महत्वाकांक्षी राजनेताओं और खुफिया तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच व्यक्तिगत गठबंधन सैन्य प्रथम विकास पाइपलाइन यूनिट 8200 प्रमुख उदाहरण के रूप में छोटे प्रबंधनीय लोकतंत्र का जोखिम वाले परीक्षण मैदान के रूप में और डेटा एनालिटिक्स को सिग्नल्स इंटेलिजेंस क्षमताओं के साथ मिश्रित करने वाली संकर पश्चिमी इसराइली पाइपलाइन। ओरेकल परत वह चेहराहीन रणनीतिक बुद्धिमत्ता भाग मानव भाग मशीन पहले से ही 2010 के दशक के मध्य में समेकित हो रही थी। यह तब से केवल अधिक शक्तिशाली हुई है। अब बहुविध मॉडल वास्तविक समय सिम्युलेशन इंजन और संप्रभु एआई आर्किटेक्चर जैसे कि ड्रीम अग्रणी है शामिल करती है। ऐसे युग में जब कुछ नेताओं के पास उनके विरोधियों या मतदान जनता के लिए उपलब्ध विकल्पों से कहीं अधिक संज्ञानात्मक और सूचनात्मक संवर्धन हो सकता है, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का चरित्र स्वयं बदल जाता है। कथा नियंत्रण घोटाला पूर्वानुमान मतदाता माइक्रो प्रेरणा और संकट सिमुलेशन असममित प्रतियोगिताएं बन जाते हैं। नागरिक 20वीं सदी के लेंस टाउन हॉल ऑफ एप्स टेलीविजन साक्षात्कार के माध्यम से नीतियों और व्यक्तित्वों पर बहस करना जारी रखते हैं। अधिकतर अनजान की सत्ता की अंतर्निहित मशीनरी को छाया में अपग्रेड कर दिया गया है। यह लोकतंत्र के लिए गहन प्रश्न उठाता है, कोई पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित करता है जब सबसे निर्णायक उपकरण वर्गीकृत पाइपलाइनों या निजी बैक चैनल्स के माध्यम से संचालित हो सकते हैं? जवाबदेही का क्या होता है जब एक नेता की प्रतिभा आंशिक रूप से कृत्रिम होती है? और यह क्षमताओं के त्वरित युग में 2017 के ट्रांसफॉर्मर से लेकर 2025-2026 के राष्ट्रीय स्तरीय साइबर मॉडल तक दुनिया भर में कितने अन्य प्रतिभाशाली बालक इसी तरह की अभी भी अदृश्य सहायता से लाभान्वित हो रहे होंगे? निष्कर्ष जांच के लायक। हम कभी भी निश्चित सार्वजनिक प्रमाण प्राप्त नहीं कर सकते हैं कि उन महत्वपूर्ण वर्षों में यरूशलम और वियना के बीच वास्तव में क्या तकनीकी सहायता, यदि कोई थी, बहती थी। ऐसी व्यवस्थाएं यदि अस्तित्व में रही होंगी तो उस विवेक के साथ संभाली गई होंगी जो खुफिया कार्य और प्रारंभिक चरण तकनीकी बीटा परीक्षण की मांग करता है। फिर भी अभिसरण सम्मोहक बना हुआ है। नेतन्याहू के साथ प्रलेखित व्यक्तिगत और वैचारिक बंधन, कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ खोजपूर्ण संपर्क, ट्रांसफॉर्मर ब्रेकथ्रू का सटीक समय, सीमित अनुभव के बावजूद कुर्स की असंभावित प्रभावशीलता, धारणा प्रबंधन पर अति निर्भरता से पैदा हुए घोटाले और एक प्रमुख एआई संप्रभु साइबर सुरक्षा यूनिकॉर्न की सह स्थापना में उनका निर्बाध कदम जो स्पष्ट रूप से उनकी सरकारी अंतर्दृष्टि पर चित्रण करता है। यह एक पैटर्न है जो कठोर चल रही पत्रकारिता जांच का हकदार है, न कि साजिश सिद्धांत के रूप में बल्कि एआई युग में शक्ति के शांत विकास में एक खिड़की के रूप में। विशुद्ध रूप से मानव राजनीति का युग समाप्त हो चुका है। एआई संवर्धित राज्य कला का युग पहले से ही यहाँ है, जो व्यक्तिगत गठबंधनों सैन्य तकनीकी पाइपलाइनों और जनता के सचेत होने से बहुत पहले कम दृश्यता वाले प्रयोगों के माध्यम से संचालित हो रहा है। सेबेस्टियन कुर्स केवल एक राजनीतिक प्रतिभाशाली बालक नहीं थे जो सूरज के बहुत पास उड़ गया। वह एक नए प्रकार की शक्ति के लिए पहले प्रमुख परीक्षण विषयों में से एक और बाद में एक उच्च प्रोफाइल विक्रेता और सहवास्तुकार हो सकता है जो अब हम में से बाकी लोगों को दिखाई देने लगा है। ऑस्ट्रिया का शांत प्रयोग छोटा और सीमित जैसा था ने शानदार अल्पकालिक परिणाम दिए, जब तक जैसा कि वास्तविकता अनिवार्य रूप से करती है उसने पीछे धकेला। 2026 में ड्रीम सिक्योरिटी के पनपने और एआई क्षमताओं की ब्रेकनेक गति से प्रगति के साथ सबक और प्रश्न बने रहते हैं। मशीनरी को अपग्रेड कर दिया गया है, केवल प्रश्न शेष है कि कितने और नेता पहले से ही अपनी तरफ एक ओरेकल के साथ काम कर रहे हैं।